सिमरन और रुद्र के सामने ये दिखाने के लिए कि आरव आर्या की बहुत केयर करता है, उसने आर्या को देहरादून घुमाने पर हाँ कह दी थी। वो आर्या को लेकर अपने कमरे में आ गया था, जबकि रुद्र और सिमरन वहां से जा चुके थे। रूम में आने के बाद आरव ने आर्या को बेड पर बैठाया और फिर खुद बाथरूम में चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वो वापस आया तो उसने देखा आर्या गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था। आरव ने उसकी तरफ देखकर आईज रोल करके कहा, अब क्या हो गया? अब तो मैंने तुम्हें देहरादून की परमिशन भी दे दी, क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है?
मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है डैड, आर्या ने धीरे से जवाब दिया।
आरव ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चेंज करके आया था इसलिए अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी अचानक आर्या ने पूछा, तो आप उस लड़की से नफरत करते हो? आरव हैरानी से आर्या की तरफ मुड़ा और भौहें उठाकर पूछा, और यहाँ कौन सी लड़की की बात हो रही है? तुम्हें कहा है ना, बड़ों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। गलती आप बड़ों की है जो बच्चों के सामने बातें करते हो, आर्या ने धीरे से जवाब दिया। वो कुछ पल रुककर बोला, उस लड़की से मेरा मतलब आयु से है। आर्या के मुंह से आयु का नाम सुनकर आरव को पहली बार गुस्सा नहीं आया, उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। फिर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आर्या की तरफ देखकर कहा, आयु, रियली? वो तुम्हारी मॉम है और तुम उसे नाम से बुला रहे हो? आर्या को लगा आरव उसे टाल रहा है, तो उसने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, आप मेरी बात को घुमाइए मत, आई हेट दिस। आपने नीचे मामा मामी से कहा कि आप मॉम से नफरत करते हो, ऐसा क्यों है? और आर्या कौन है? मैं अयान चाचू से भी पूछना चाहता था, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे। आर्या का जिक्र होते ही आरव इमोशनल होने लगा, उसकी आंखों के सामने आर्या का चेहरा घूमने लगा। जब उसने आर्या को खोया था तब वो सिर्फ 5 महीने की थी। आरव आर्या के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे से बोला, तुम्हें सुनने में कोई गलतफहमी हो गई होगी, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। आर्या तुम्हारा ही नाम है, किसी और का नहीं। आगे से तुम बड़ों की बातें नहीं सुनोगे, अगर कोई तुम्हारे सामने बात भी कर रहा है तो तुम वहां से चले जाओगे। ठीक है, आर्या ने जवाब दिया। फिर वो आगे बोला, आपने अभी भी नहीं बताया कि आप उनसे नफरत क्यों करते हो। मैं बच्चा हूँ इसलिए आपकी बड़ी बातें नहीं समझ सकता, पर आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। नानी नानू भी उनका नाम नहीं सुनना चाहते, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो सब उनसे हेट करने लगे? आरव आर्या से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, कुछ नहीं किया है, शीज एन एंजल। अपनी मॉम के बारे में ऐसा नहीं कहते, वो बड़ों की बातें हैं और तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। रही बात तुम्हारी मॉम की, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अगर पता होता तो उसे जरूर तुम्हारे पास ले आता। वो मुझे छोड़कर क्यों गई? युवानी आंटी वीर के साथ रहती है, सिमरन मॉमी भी रेहान के साथ रहती है, फिर मेरी मॉम को ये नहीं पता क्या छोटे बच्चों को उनकी मॉम चाहिए होती है? आर्या ने मासूमियत से पूछा। आरव इस वक्त आर्या के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। उसने आर्या को गोद में उठाया और उससे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे सिर में भी दर्द है, नीचे चलकर खाना खाते हैं, मुझे नींद आ रही है। आर्या ने उसकी बात पर हामी भरी, वो आरव के सीने से चिपक गया, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने मन में कहा, मैं नहीं चाहता बचपन में मैं जिस दर्द से गुजरा उस दर्द से तुम भी गुजरो। बदकिस्मती से हम दोनों को ही माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा आरव खुराना नहीं बनने दूंगा। यू आर लकी दैट तुम्हें छवि सिंघानिया ने नहीं, आयुष्का सिंह ओबेरॉय ने पैदा किया है। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई, बल्कि तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान करने चली थी। उसे तो पता तक नहीं कि तुम इस दुनिया में हो, अगर पता होता तो मुझसे लड़ लेती, पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। सब मेरी ही गलती है, उस दिन मैंने उसे उस साइकोपैथ के पास नहीं छोड़ा होता तो सब कुछ कितना सही रहता। गुस्से में मुझे उसे ये नहीं बताना चाहिए था कि उसके हाथ से ही अनु की मौत हुई है, न जाने वो कहाँ होगी और किस दर्द में होगी। आरव को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, वो आर्या को लेकर नीचे पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ आरिशा भी स्कूल से वापस लौट चुकी थी। इवनिंग टाइम में वो साथ में एक साथ बैठे हुए थे। आयु आरिशा का होमवर्क देख रही थी जबकि ज्ञानजी अपने मोबाइल में लगे हुए थे। अचानक ज्ञानजी ने आयु की तरफ देखकर पूछा, तो क्या सोचा है तुमने देहरादून जाने के बारे में? देखो, मैं वेकेशन पर किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा और मैं आरू के बिना नहीं रह सकता, तो वो मेरे साथ जाएगी। अब तुम अपना सोच लो। आप दोनों की जिद के आगे मेरे पास कभी कोई ऑप्शन बचता है क्या दादू? आयु ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं, 3 दिन बाद की फ्लाइट है, तब तक आरिशा के वेकेशन भी शुरू हो जाएंगे। आरिशा को अब तक उनके वेकेशन पर जाने की बात का पता नहीं था। जैसे ही उसने सुना वो खुशी से नाचने लगी। वो आयु के गले लगकर बोली, वाह, हम इंडिया जा रहे हैं, चलिए ना मॉम शॉपिंग करने चलते हैं, वहाँ का वेदर हॉट होता है तो उस हिसाब से शॉपिंग करेंगे। बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ज्ञानजी ने आरिशा की बात पर सहमति जताई तो उस पर उसने उन्हें हाईफाई दी। आयु ने भी उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी, आप दोनों ने मेरा आधे से ज्यादा सामान डिस्ट्रॉय कर दिया है, चलिए अभी चलते हैं, वेदर भी काफी सही है और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे ताकि मुझे कुछ ना बनाना पड़े। एक दिन तुम घर पर रही हो उसी में तुम्हें कुकिंग की टेंशन सताने लगी, यहाँ मैं कुक करता हूँ,
ज्ञान जी ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। आयु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर चली गई और बैग के साथ बाहर पहुंची। उसे देखकर आरिशा ने सिर पकड़कर कहा, मॉम आप बहुत बोरिंग हो, हमेशा इन पैंट्स और ओवरकोट के साथ बहुत प्रोफेशनल लगती हो, आज आपको मैं तैयार करूंगी। बिल्कुल नहीं, आयु घबराकर जल्दी से बोली, मुझे अपना चेहरा बहुत प्यारा है, देखो मैं जैसी हूँ वो ठीक हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, फिर भी आप मेरे हिसाब से कपड़े पहनोगे, अब चलो मेरे साथ, आरिशा ने तेज आवाज में कहा और आयु का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर गई। आरिशा ने आयु के लिए नी लेंथ का ब्लैक वार्म बॉडीकॉन ड्रेस सिलेक्ट किया था, उसके साथ वेस्ट लेंथ की जैकेट और लॉन्ग ब्लैक बूट्स। मजबूरन आयु को वो ड्रेस पहननी पड़ी। ड्रेस चेंज करने के बाद आरिशा ने उसके बालों को खुला छोड़ दिया। इस लुक में उसके रोल किए हुए बाल काफी परफेक्ट ही सेट हो रहे थे। आरिशा ने भी उसी तरह का कुछ ड्रेसअप किया था। वो आयु के पास खड़ी हुई और उसे नीचे झुकने का इशारा किया। जैसे ही आयु नीचे झुकी, उसने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, यू आर लुकिंग लाइक माई एल्डर सिस्टर। उसके इस कॉम्प्लीमेंट पर आयु ने हंसकर कहा, बट आई एम नॉट योर एल्डर सिस्टर, आई एम योर मॉम, और मुझे वही बने रहने दो। तैयार होने के बाद आयु ने बैग लिया और फिर आरिशा के साथ बाहर आ गई। उन दोनों को तैयार हुआ देखकर ज्ञान जी ने सिर हिलाकर कहा, आज लग रही हो ना ओबेरॉय खानदान की बेटी जैसी, वरना तो आरफ खुराना की वाइफ। वो बोलते हुए रुक गए। आरिशा ने उनकी बात सुन ली थी। वो ज्ञान जी की तरफ देखकर कंधे उचकाकर बोली, हु इज आरफ खुराना, उसका सरनेम मेरे सरनेम से मैच करता है, क्या वो किसी तरह से हमसे रिलेटेड है? आरिशा के सामने पहली बार आरफ का नाम आया था और उसने तुरंत कैच कर लिया। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी स्मार्ट और शार्प थी। आरिशा के मुंह से आरव का नाम सुनकर आयु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे एक पल के लिए लगा कि आरव अभी यहाँ पर आ जाएगा और आरिशा को उससे लेकर चला जाएगा।
आरिशा के मुंह से आरव का नाम सुनकर आयु ज्ञान जी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इससे पहले कि उसके गुस्से उनके ऊपर फूटता, वो जल्दी से बोले, अरे आरू तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई, तुम अपनी मॉम की तरह बोरिंग होती जा रही हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें शॉपिंग के बाद कहाँ जाना है। जैसे कि बच्चे आसानी से किसी भी चीज को भूल जाते हैं, वैसे ही आरिशा ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो खुश होकर बोली, मुझे शॉपिंग के बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाना है और ढेर सारी शॉपिंग करनी है, आप मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे? मना तो ये तब करेंगे ना जब हमारे साथ जाएंगे, आयु ने ज्ञान जी की तरफ देखकर कहा। उन्होंने थोड़ी देर पहले जो भी किया उसके बाद से वो गुस्सा हो गई थी। ठीक है तो ऐसा करते हैं, तुम जाना रहने दो, मैं और आरिशा ही चले जाते हैं, तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आ जाएंगे, ज्ञान जी ने कंधे उचकाकर कहा। फिर उन्होंने आरिशा की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया था। आयु वहां से गुस्से में जाने लगी, तभी आरिशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और हंसते हुए कहा, आप कितना जल्दी गुस्सा हो जाती हो मॉम, हम तो आपके साथ मस्ती कर रहे थे, चलिए साथ में चलते हैं और आप मुझे गोद में उठाइए, आज मुझे चलकर नहीं जाना है, आपने कहा था ना आप मेरी एल्डर सिस्टर नहीं मेरी मॉम हो, तो मॉम अपने बच्चों को गोद में उठाकर घूमती हैं। आरिशा ऐसा आयु के पास आने के लिए कर रही थी। वो जानती थी कि जब भी वो आयु को हग करती थी उसका मूड ठीक हो जाता था। आयु ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और आरिशा को गोद में लेकर बाहर जाने लगी। ज्ञान जी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही आयु अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी, उसे सामने से लक्षित आता दिखाई दिया। आयु आज बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी, तो वो उसकी तरफ खिंचा चला गया। वो आयु को एकटक देख रहा था। लक्षित की इस तरह देखने पर आयु अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी आरिशा ने लक्षित के सामने क्लैप किया और सिर हिलाकर कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर जैन, वाई आर यू स्टेयरिंग एट माई मॉम? वो आज ये हमेशा से डिफरेंट लग रही है, आई मीन शी इज लुकिंग गॉर्जियस, लक्षित ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में आयु को कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, तो वो इधर उधर देखने लगा। वो मेरी मॉम है इसीलिए गॉर्जियस ही लगेगी, पर आप मेरी मॉम को इस तरह नहीं देख सकते, जाकर अपनी मॉम को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, वैसे भी इन्होंने मेरी चॉइस के कपड़े पहने हैं तो गॉर्जियस तो लगेगी ही, आप भी अपनी मॉम को कपड़े सिलेक्ट करके दीजिए, वो भी अच्छी लगेगी, आरिशा लक्षित को तुरंत डांटने लगी। उसके इस बिहेवियर से समझ आता था कि वो आयु को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव थी। लक्षित ने उन दोनों को सॉरी कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही आयु ने आरिशा के गाल पर किस किया और मुस्कुराकर बोली, तुम तो मेरी बॉडीगार्ड बनती जा रही हो, बनना पड़ता है जब आपकी मॉम इतनी ब्यूटीफुल हो, आरिशा ने बाल झटक कर कहा। उसके बाद ज्ञान जी आरिशा और आयु शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। उन्होंने डिनर भी बाहर ही किया था और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया था। देखते ही देखते 3 दिन गुजर चुके थे। आयु, आरिशा और ज्ञान जी देहरादून पहुंच चुके थे। उनकी कैब ने उन्हें ज्ञान जी के फार्म हाउस के आगे छोड़ा। कैब के जाते ही ज्ञान जी अंदर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने देखा आयु अभी भी वहीं पर रुकी हुई थी। पहले वो इंडिया नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब तो वो घर के अंदर भी नहीं जा रही थी। ये वही घर था जहां आयु का ज्यादातर टाइम बीता था। उसने मेडिकल भी देहरादून से ही की थी। उसे वहीं पर रुका हुआ देखकर ज्ञान जी ने तेज आवाज में कहा, इस घर को देखकर इमोशनल बाद में हो जाना, चलो अंदर चलते हैं। आयु ने उनकी तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, मुझे अंदर नहीं जाना है।
ज्ञान जी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी बात का जवाब देने से पहले आयु ने आरिशा के कान में एयरपॉड्स डालकर म्यूजिक प्ले कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बातें आरिशा ना सुन सके। आरिशा म्यूजिक एंजॉय कर रही थी तब आयु ने ज्ञान जी के पास आकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे ओबेरॉय की किसी भी जगह पर नहीं जाना है। मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मैं भी एक ओबेरॉय हूँ और तुम मेरे घर पर ही रहती हो। अचानक ये क्या बेवकूफों वाली बातें करने लग गई, ज्ञान जी ने सिर हिलाकर कहा। आयु ने जवाब में कहा, वो इसीलिए क्योंकि मैं आपको आपके घर का रेंट देती हूँ। आपकी भी मेरे मॉम डैड से नहीं बनती, इस वजह से मैं आपके पास हेल्प के लिए गई थी। बोलते हुए आयु की आंखें नम होने लगी। वो सुबकते हुए बोली, पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब कोई गैर भी आपकी फीलिंग्स को समझ लेते हैं लेकिन आपकी अपने नहीं समझ पाते। पहले आरव ने मुझे उस इंसान के साथ छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। फिर उसको मुझ पर दया आ गई थी और उसने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर दया नहीं आई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आरिशा को लेकर वहां से निकली थी। मुझे दुबई से बाहर आना था। मैंने मॉम डैड को कॉल किया ताकि वो मेरी तरफ से आरव को समझा सके। हमने अपना बेटा खो दिया लेकिन आरू अभी भी हमारे साथ है। उन्होंने मुझे कातिल कहा। मजबूरी में मुझे उस शख्स से पैसे उधार लेने पड़े, उसके पास वापस जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैंने क्या अनु को जानबूझकर मारा था जो उन्होंने मुझे ऐसा कहा? उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं तो मुझे भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। लंदन वाला घर आपका है तब मैं वहां रहती हूँ, ये वाला घर मिस्टर ओबेरॉय का है तो मुझे अंदर कदम भी नहीं रखना, और आप मुझे फोर्स नहीं करोगे, वरना मैं अभी आरिशा को लेकर लंदन वापस चली जाऊंगी। आयु की पलकें भीगने लगी थी। ज्ञान जी आयु के इमोशंस को अच्छी तरह समझ सकते थे। उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया और हामी सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर किसी होटल में रह लो, लेकिन घूमने के लिए बाहर साथ ही चलेंगे। आयु ने हामी सिर हिलाया और फिर ज्ञान जी के गले लग गई। वो रोते हुए बोली, दादू मुझे कोई और समझे या ना समझे लेकिन आपने हमेशा समझा है, तभी मैं दुबई से कहीं और जाने के बजाय आपके पास लंदन आई थी। ठीक है अब मुझे ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छे होटल में जाकर रहना, और अब हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, सिर्फ एक हफ्ते के लिए रुककर चले जाएंगे, ज्ञान जी ने जवाब दिया। उन्हें आरिशा और आयु के बिना रहने की आदत नहीं थी तो वो इमोशनल हो रहे थे। आयु ने उनकी बात पर हामी भरी और आरिशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी। आरिशा अभी भी हैरान थी कि आयु आखिर उसे दूर क्यों लेकर जा रही है। उसने ज्ञान जी की तरफ मुड़कर देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर आरिशा को बाय कहा।